हरे कृष्णा। आज बलराम जयंती है। इसी दिवस पर व्रज भूमि में भगवान श्री बलराम का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, और सदैव श्री कृष्ण के साथ में ही रहते हैं। वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पे बलराम जी उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर उनके साथ में रहते हैं। बलराम जी भी श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। इसलिए बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने आप को विस्तार किया है बलराम जी के रूप में, अपनी ही सेवा करने के लिए। बलराम जी गोरे हैं और श्री कृष्ण सांवले हैं, बस दोनों में इतना ही अंतर है। तो बलराम भी भगवान हैं, श्री कृष्ण भी भगवान हैं, एक ही भगवान। अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं अपनी लीलाओं को बढ़ाने के लिए, लीलाओं के आनंद को बढ़ाने के लिए। तो बलराम जी कभी कभी एक तरह से सेवा करते हैं, कभी दूसरी तरह से करते हैं, परंतु सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। सारा जो वैकुंठ जगत है, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वो बलराम जी के शक्ति से ही बना हुआ है। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका धाम बना के, उनके वस्त्र बना के, उनके आभूषण आदि बना के, उनके आसन शैया आदि बना के, साथ साथ जब भगवान कोई भी कार्य कर रहे होते हैं या थक जाते हैं तो बलराम जी उनकी चरण सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। उनके दास बनके श्री कृष्ण के साथ में वृंदावन में गाय चराने जाते हैं। ग्वाल बालों के बीच में जब हंसी मजाक होती है, क्रीड़ा होती है, असुरों का वध होता है, तो बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में सदैव रहते हैं। सख्यरस या मित्रता के भावना का भी वो स्वाद लेते हैं। लेकिन वो बड़े भाई होने के कारण कभी कभी श्री कृष्ण को आदेश देते हैं, देखो आज ऐसा नहीं करना, और थोड़ा सावधान रहना, वहाँ थोड़ा खतरा है। तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना, तो कभी कभी बलराम जी ऐसे श्री कृष्ण की रक्षा भी किया करते थे। इसलिए वात्सल्य भाव में भी कभी वो रहा करते थे। साथ साथ में माधुर्य रस, जो गोपियों का भाव है श्री कृष्ण के प्रति, इस भाव ने में भी बलराम जी ने श्री कृष्ण की सेवा की है। अपने आप को श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन के रूप में, उनका नाम है अनंग मंजरी। दूसरे शब्दों में बलराम जी सदैव श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं भगवान होने के बावजूद। इसलिए बलराम को सेवक भगवान कहते हैं और श्री कृष्ण सेव्य भगवान हैं। सेव्य भगवान हैं वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है, और सेवक भगवान वो हैं जो सेव्य भगवान की सेवा करते हैं। वैसे दोनों ही भगवान हैं, एक ही भगवान है, कोई दो अलग अलग भगवान नहीं है। तो ये श्री कृष्ण और बलराम हैं। बहुत सुंदर उनकी लीलाएं वृंदावन में हुई, आगे चल के मथुरा में भी और आगे द्वारका में भी। जब श्री कृष्ण का जन्म होना था या प्राकट्य होना था, तो मथुरा में कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी दोनों को बंद रखा गया था कंस के द्वारा। और जैसा कि आप सबको पता है, आप बचपन से सब सुनते आए हैं कि माता देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को लगातार एक के बाद एक कंस ने मार डाला बड़े क्रूरता से, क्योंकि कंस को पता चला था, एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस इतना डर गया था कि जब भी कोई बच्चा होता था वसुदेव और देवकी का, तुरंत जाके उस बच्चे को मार डालता था। ऐसे 6 बच्चों की हत्या कर ली कंस ने, और जब 7वें बार माता देवकी गर्भवती हुई तो उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के अंश बलराम जी प्रकट हुए, और श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को बुलाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, तो उनकी कोई शक्ति होनी चाहिए। यदि हम कहते हैं कि कोई राजा है तो कोई प्रजा होनी चाहिए, कोई राज्य होना चाहिए। कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई राज्य नहीं, तो फिर वो किस तरह का राजा? केवल नाम के लिए राजा। उसी तरह से यदि कोई वास्तव में भगवान है तो वो सर्वशक्तिमान होने चाहिए, अर्थात उन्हें कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए बड़ा आसान होना चाहिए। परस्य शक्तिर्विव दैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, अपने इच्छा करने मात्र से भगवान अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और ये शक्तियां जो हैं उनके मूल हैं योग माया। योग माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की व्यवस्था या आयोजन करती हैं भगवान के धाम में। तो योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बुलाया और कहा कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी सेविका हो। अब तुम्हारे लिए एक और सेवा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या सेवा है कि मेरा अंश बलराम अनंत शेष अब मेरी माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। आपको ये काम करना है कि देवकी के गर्भ से मेरे अंश को अर्थात बलराम को रोहिणी के गर्भ में ले जाना है। रोहिणी देवी वो और अन्य अनेक वसुदेव की पत्नियां या रानियां नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में रहा करती थीं। नंद महाराज ने या वसुदेव ने उनको भेजा था, क्योंकि देवकी के साथ में वो कारागार में बंद थे, तो सबकी सुरक्षा के लिए वो वहां पे रह रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे देवी, जब तुम ऐसा करोगे तो फिर लोगों को लगेगा कि देवकी माता का गर्भपात हुआ है और गर्भ का पतन हुआ है, और उसके बाद मैं देवकी माता के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा और मेरा जन्म वहां देवकी नंदन के रूप में हो जाएगा और तुम मेरी बहन बनोगी। तुम जाना उधर यशोदा की पुत्री बनके प्रकट हो जाना, और जब वसुदेव मुझे यमुना पार करके नंद और यशोदा के यहां ले जाएंगे तो तुम्हें यहां पर वो ले आएंगे, तो तुम इस तरह से मेरी सेवा करोगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वहां पे जो मेरे 7वें माता देवकी के 7वें गर्भ होंगे वो होंगे बलराम, लेकिन उनके कई नाम होंगे। क्या नाम होंगे? उन सबसे पहला उनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि तुम अर्थात योग माया उनको आकर्षित करोगी, आकृष्ट करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ले जाओगे, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। साथ साथ में गोकुल के निवासियों को वो बड़ा आनंद देंगे, गोकुल रंजन कान्हा। कृष्ण आनंद देते हैं तो बलराम भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम होगा राम। साथ साथ में बहुत ही बलवान होंगे वो, इसलिए उनका नाम होगा बलभद्र। और जहां तक तुम्हारी बात है हे देवी, शुभे तुम्हारा भी कल्याण हो। यदि तुम सोच रही हो कि मैं ये ऐसे महान कार्य, इतना कठिन कार्य कैसे करूंगी, तो चिंता नहीं करना, मेरी कृपा से, मेरी आशीर्वाद से ये असंभव कार्य भी तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस सेवा करने के लिए तुम सारे पृथ्वी लोक पर प्रसिद्ध हो जाओगी, अनेक नामों से जानी जाओगी, जगह जगह में भारतवर्ष में तुम्हारे अलग अलग नाम रहेंगे। जैसे कि कोई कहेगा तुम्हारा नाम है वैष्णवी, कोई शारदा, कोई ईशानी, कोई विजया, कोई चंडिका, कोई अंबिका, ऐसे बहुत सारे नाम तुम्हारे होंगे जगह जगह में। और तुम बहुत जल्दी लोगों की भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करोगी, इसलिए काम वर्य प्रदम, तुम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करोगी और पूर्ण करने वालों में से ईश्वरी सबसे श्रेष्ठ होंगी तुम। इसलिए तुम्हारे जैसे कोई भौतिक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा। तो भगवान ने योग माया को वो शक्ति प्रदान की और वो वरदान प्रदान किया कि आगे चल के तुम, तुम्हारे उपासकों को ऐसे वरदान दे पाओगे कि उनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, खैर वो मुंह से निकल गया, अभी क्या, केवल भागवत की बात हम दोहरा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सब भक्ति करने आए हैं, आपको कोई भौतिक इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे इसके बाद क्योंकि श्री कृष्ण और उनकी शक्ति योग माया अब भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए अब दो दल बने हैं, ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। एक दल है वैष्णवों का जो सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, ऐसे भगवान कृष्ण के विविध रूपों का और उनकी शक्तियों का की सेवा करते हैं। और दूसरा जो दल है उनको कहते हैं शाक्त, शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक। वैष्णव जो होते हैं वो शक्तिमान के उपासक होते हैं, परंतु जो शाक्त होते हैं वो शक्ति के उपासक होते हैं, दुर्गा के, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चंडिका, तो ऐसे कभी कुमुदा। तो ये अलग अलग तरह से ये शक्ति की उपासना करते हैं। और विभिन्न प्रांतों में जहां दुर्गा देवी जो कि योग माया के विस्तार हैं वो उपस्थित हैं, वहां वहां उनकी विशेष शक्तियां हैं, क्योंकि वो बहुत अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनका नाम है कुमुदा। ऐसे अलग अलग जगह, जैसे यहाँ पे भी कोल्हापुर में वो रहती हैं, और बंबई में मुंबा देवी, अंबिका, तो ऐसे उनके कई नाम है अलग अलग जगह पे। जहाँ पे वो प्रसिद्ध होंगी वहां पे वो कोई विशेष वरदान प्रदान करने में सक्षम होंगी। इसलिए बहुत सारे लोग देवी की उपासना करने जाते हैं, दुर्गा की उपासना करने जाते हैं, जय माता दी कह के, अंबे माँ अंबे। तो ऐसे दुर्गा देवी की उपासना जो करते हैं वो भी भगवान की शक्ति की उपासना करते हैं, और दुर्गा देवी को अपना माँ, अपनी माता समझते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु वैसे वो जब दुर्गा देवी के पास में जाते हैं वो ऐसे कोई इस भौतिक संसार के भीतर ही कोई लाभ या कोई वरदान चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो शाक्त होते हैं उनके जीवन का ध्येय इस संसार के भीतर ही होता है। वो भूल चुके होते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है। जीवन का ध्येय है भगवान कृष्ण की भक्ति करके, उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करके उनके धाम में लौट के जाना, इस भौतिक जगत के परे। परंतु वो इस बात को भूल चुके हैं। वो सोचते हैं कि जीवन की सफलता और जीवन का सुख बस यही संसार के भीतर भोग करने में है, और धर्म को वो ऐसे एक भोग के लिए साधन मानते हैं, एक वाहन बना रखा है। इसलिए ऐसे धर्म को, हालांकि इनका इसका वर्णन वेद शास्त्र में कर्मकांड विभाग आदि में पाया जाता है, फिर भी वैष्णव ऐसे कर्मकांड आदि में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वैष्णवों को कोई भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में कोई रुचि नहीं है। वो तो निस्वार्थ भाव से शक्तिमान श्री कृष्ण की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। जब श्री कृष्ण ने इस तरह से दुर्गा देवी को आशीर्वाद दिया तो योग माया वहां पर चली आई और बलराम जी को आकर्षित करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और रोहिणी देवी के सपने में आके योग माया ने कहा कि हे देवी, आप बिल्कुल डरना नहीं, अभी आपके गर्भ में स्वयं हमारे स्वामी बलराम जी प्रकट हो रहे हैं। उधर जब बलराम जी प्रकट हुए तो वहां पे बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु बहुत कम आवाज में, क्योंकि सबको भय था कि कहीं कंस को पता नहीं चल जाए, नहीं तो कंस आक्रमण करेगा, हमला करेगा। वैसे कंस तो बहुत अत्याचार करते जा रहा था सब जगह। और फिर श्री कृष्ण जैसे योग माया से कहा था, उसी प्रकार वो वहां देवकी माता के गर्भ से उनके आठवें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और फिर वसुदेव उनको उस पार ले गए गोकुल, और वहां जाके यशोदा माता के पास में जो कन्या थी, पुत्री थी, जो योग माया थी, उसको उठाकर यहां पर ले आए। और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस तक खबर पहुंची। कंस आया, उस छोटे से बच्ची को के पैरों को पकड़ लिया और फिर से ऐसे ही बड़े क्रूरता से मार डालने वाले थे कि वो छोटी बच्ची कंस के मुट्ठी से निकलकर ऊपर चली गई और आसमान में खड़े होकर डांटने लगी कंस को कि अरे क्रूर कंस, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु का कारण अब जन्म ले चुके हैं कहीं दूसरी जगह, इसलिए तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे पाप कम से कम अभी तो बंद कर दो। कंस बड़ा आश्चर्यचकित हो गया योग माया को, दुर्गा देवी को अपनी अष्टभुजाओं में के रूप में देखकर। तुरंत कंस का धक्का बैठ गया, वसुदेव और देवकी के पास आके बहुत क्षमा याचना करने लगा। उधर दुर्गा देवी तो फिर आसमान से चली गई, स्वधाम चली गई, और वहां कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन में रहे। तो कृष्ण बलराम दोनों बहुत सुंदर बाल लीला करते रहे। 15 दिन बाद, बलराम जी के 15 दिन बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 9 दिन वैसे देखा जाए तो। और दोनों सारे ब्रजभूमि में, सारे ब्रजवासी बहुत खुश थे परंतु डर रहे थे। और विशेष करके जब कंस ने पूतना नाम के एक भयंकर राक्षसी को भेजा और श्री कृष्ण ने आसानी से पूतना का स्तनपान करके पूतना का वध कर दिया, जबकि श्री कृष्ण की आयु थोड़े दिवसों की थी बस। उधर एक महीने की आयु के लगभग तृणावर्त नाम का एक असुर आया, जो भवंडर के रूप में आया और श्री कृष्ण को उठाकर ले गया। सारे ब्रजवासियाँ ब्रजवासी जो हैं वो बहुत ही चिंतित हो गए, रोने लगे, लेकिन श्री कृष्ण इतने भारी हो गए तृणावर्त के लिए कि तृणावर्त नीचे गिर पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अब पूतना और तृणावर्त का वध हो चुका था और सारे ब्रजवासी बहुत ही चिंतित थे कि हमारे लाडले कृष्ण बलराम का क्या होगा, ऐसे असुर यहाँ पर आते रहते हैं, कंस ने ही भेजा होगा इनको। तो उधर गर्ग मुनि को बुलाया वसुदेव ने, नंद महाराज ने, क्योंकि वो यदुवंश के कुल गुरु थे। तो नंद महाराज ने जब देखा कि गर्ग मुनि आए हैं तो उनका बड़ा सम्मान किया। सम्मान पूर्वक स्वागत करने के बाद और उनकी प्रशंसा करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, काफी समय बीत चुका है और हमारे दो लड़के हैं कृष्ण और बलराम, उनका नामकरण संस्कार हमने अभी तक नहीं कराया है, तो आप यह नाम उनको देकर कृपा करें। तो गर्ग मुनि ने कहा कि देखो, कंस बड़ा चतुर है और कंस ने सब जगह अपने जासूस भेजे हुए हैं, अपने असुरों को भेजता रहता है। यदि बड़े धूमधाम से हमने नामकरण संस्कार किया यहाँ पर तो अवश्य खबर पहुंच जाएगी कंस के पास, और कंस हो सकता है संशय रखेगा कि इतने धूमधाम से जब ये नामकरण संस्कार मनाया जा रहा है तो संभव है कि यहाँ मेरे मृत्यु का कारण मेरे शत्रु कृष्ण का जन्म हुआ होगा, फिर वो यहाँ आएंगे और कृष्ण बलराम को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम बड़े चुपचाप एकांत में इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। तो फिर दोनों बच्चों को नाम दिया गर्ग मुनि ने। तो बलराम जी को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि इस बच्चे के गुण इतने दिव्य हैं और आश्चर्यजनक हैं कि वो सभी को रंजित करेगा, सभी को आनंदित करेगा, इसलिए उसका नाम होना चाहिए राम। साथ साथ बहुत बलवान भी होगा, इसलिए उसका नाम होना चाहिए बल या बलराम, और फिर इसका नाम भी होगा संकर्षण। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने आप दोनों के परिवार को मिलाया है, हे नंद महाराज, आपके परिवार को और उधर वसुदेव के परिवार को। तो संकर्षण शब्द के तात्पर्य दो हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया देवी को कहा था कि बलराम का नाम संकर्षण इसलिए होगा क्योंकि वो देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर माता रोहिणी के गर्भ में ले जाए गए थे, और दूसरा अर्थ ये है या दूसरा कारण ये है कि उन्होंने दोनों परिवारों को जोड़ा था, मथुरा में वसुदेव और यहाँ पे गोकुल में नंद महाराज। कैसे जोड़ा था, क्या संबंध था उनका? वैसे एक राजा थे जिनका नाम था देवमीढ़। अब देवमीढ़ क्षत्रिय राजा थे, उनके अनेक रानियां थीं, तो एक क्षत्रिय रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था शूरसेन, और देवमीढ़ की एक और वैश्या पत्नी भी थी, वैश्य वर्ण की थी वो, तो उनसे भी एक पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम था पर्जन्य। उधर शूरसेन जो कि देवमीढ़ के क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने एक क्षत्रिय नारी से विवाह कर लिया और वसुदेव का जन्म हुआ, और वसुदेव की बहन थी कुंती महारानी या प्रिथा जो कि पांडवों की माँ थी, तो वो दोनों भाई बहन शूरसेन के वो संतान थे। दूसरी ओर पर्जन्य जो कि देवमीड़ के वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने एक वैश्य नारी से विवाह किया और उनके कई पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र का नाम था नंद। तो नंद महाराज, क्षमा कीजिए, वैश्य पुत्री से हुए वसुध नंद महाराज, सही है। तो नंद महाराज जो हैं वो गोकुल में रहा करते थे और यशोदा से उनका विवाह हुआ, तो वो उनका वैश्य उनकी वंशावली रही और यहाँ पे मथुरा में रहने वाले वसुदेव क्षत्रिय वंशावली उनकी रही। तो अब दोनों का संबंध, दोनों के जो वंश हैं वो एक हैं, परंतु अलग हुए थे क्योंकि एक वैश्य परंपरा हुई और दूसरी क्षत्रिय परंपरा हुई। तो दोनों के पूर्वज एक थे, देवमीढ़। लेकिन अब बलराम जी जब आए तो उन्होंने पुनः दोनों को मिला दिया, क्योंकि पहले वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और उसके बाद रोहिणी के गर्भ में चले आए। लेकिन उस समय गर्ग मुनि ने ये नहीं बताया रोहिणी देवी को कि वैसे जो आपका बच्चा है ये पहले देवकी के गर्भ में था, ये नहीं बताया। लेकिन इतना ही कहा कि क्योंकि इन दोनों परिवारों को जोड़ दिया है इस बच्चे ने, इसलिए इसका नाम होगा बलराम या संकर्षण। तो ऐसे बलराम जी के अनेक नाम हैं, राम, बलराम, बलभद्र, संकर्षण इत्यादि। तो राम शब्द बलराम को भी संबोधित करता है, केवल अयोध्यावासी राम को नहीं, कभी कभी अयोध्यावासी राम को, कभी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को। अब इस द्वापर युग में वो बड़े भाई बनकर आए, लेकिन कभी कभी छोटे भाई बनकर भी आते हैं। हम देखते हैं कि त्रेता युग में लक्ष्मण, वो तो श्री राम के छोटे भाई थे और उनको श्री राम की सेवा करनी पड़ी, श्री राम के जितने भी आज्ञाएं हुआ करते थे उनका पालन करना पड़ा, क्योंकि छोटे भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई के आदेशों का पालन करना। बड़ा भाई जो होता है वो पिता तुल्य होता है, इसलिए कई बार श्री राम ऐसे कोई आज्ञा दे देते थे जिसका पालन करना लक्ष्मण के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वो बहुत आग बबूले हो जाते थे कि मेरे बड़े भाई ने ऐसे आज्ञा कैसे दी, जैसे कि सीता देवी को जाके फिर से वन में छोड़ाना। तो लक्ष्मण ने सोचा ये कैसे मैं कर सकता हूं, ये संभव नहीं है, परंतु क्या करें, बड़े भाई की आज्ञा थी तो करना पड़ा। तो ऐसे अनेकों बार हुआ, इसलिए लक्ष्मण ने ठान लिया कि अब मैं तो अनुज हूं, छोटा भाई हूं, इसलिए लोग मुझे रामानुज कहते हैं। अनुज मतलब जो बाद में जन्म लेता है, अर्थात छोटा भाई। तो मैं राम का छोटा भाई हूं, इसलिए मेरा नाम रामानुज है। लेकिन अगली बार मैं रामानुज ही रहूंगा, मैं रामानुज का बड़ा भाई बन जाऊंगा, मैं राम के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और राम जो है वे मेरे छोटे भाई के रूप में प्रकट होंगे कृष्ण जब हो जाएंगे। तो फिर द्वापर युग में लक्ष्मण बलराम बन के आए और राम कृष्ण बनकर आए। इसलिए इस समय श्री कृष्ण रामानुज बने। तो रामानुज लक्ष्मण का नाम है और कृष्ण का भी नाम है, क्योंकि बलराम का एक नाम है राम, तो उनके छोटे भाई हुए श्री कृष्ण रामानुज। तो ऐसे दोनों व्रज में अपनी बाल लीला बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शित करते रहे। जैसा कि आप सबको पता है, गोकुल तो गायों की नगरी है, इसलिए तो नाम है गोकुल। कुल मतलब घर, निवास स्थान, जहाँ अनगिनत गाय निवास करते हैं, जहाँ पे गायों की सेवा बड़े प्रेम से अच्छी तरह से ऐश्वर्यशाली रूप से होती है, वो है गोकुल। तो वहां पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों गायों के साथ बछड़ों के साथ में लीला करते रहे। जब वो अपने घुटनों पे चलते थे, खड़े होकर चलने की सामर्थ्य अभी तक नहीं था उनको, क्योंकि वो नर लीला तो कर रहे हैं, तो गोबर में गौमूत्र में इधर उधर घूमते रहते थे, उनके सारे शरीर में गोबर गौमूत्र लग जाता था। और कभी उन्होंने इसे तुच्छ नहीं समझा, जैसे कि आजकल के लोग समझते हैं। आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है, शहरों की बात तो दूर है, गांव में भी आज लोग गोबर का स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। गोकुल धाम में भी, जहां बहुत सारी सेवा की आवश्यकता होती है, कभी कभी जब गांव के इधर उधर से गांव के लोग आते हैं सेवा करने के लिए, तो कहते हैं हम खेती करेंगे, हम और कोई काम करेंगे, घर के निर्माण का कार्य भला करेंगे, लेकिन गोबर उठाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कोई नीच कार्य है, कोई तुच्छ कार्य है। उनके मन में चिंता ये रहती है कि कोई अगर देखे कि मैं गोबर उठा रहा हूँ, ये मेरा काम है, तो समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा रहेगी नहीं। गांव में भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो सोचिए शहर में क्या लोग सोचेंगे। शहर में ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कभी गोबर भी नहीं देखा होगा, गाय नहीं देखी होगी, गोबर की बात दूसरी। तो उनको उनके मन में ऐसे विचार है कि समाज में एक ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ये एक नीच काम है, परंतु यदि कोई कार्य भगवान करना पसंद करते हैं, भगवान के लिए कोई जघन्य कार्य नहीं है, तुच्छ कार्य नहीं है, बल्कि भगवान उसमें लौटते हैं और बड़ा आनंद आता है उनको अपने शरीर पे गोबर का लेप लगाने के लिए। जब भगवान के लिए इतना ऊंचा स्थान गोबर का है और हम इसको इतना तुच्छ मानते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है। सोचिए कि हमारे भागवत संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से हम कितने दूर निकल चुके हैं। तो श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में ऐसे गोबर गौमूत्र में बस रमण किया करते थे। कभी गाय के बछड़ों की पूछ पकड़ लेते थे और जो बछड़े हैं वो घबरा जाते थे कि अरे क्या हो गया, किसने हमारे पूंछ को पकड़ ली, कोई हमला करने तो नहीं आ रहा। तो वो डर के मारे उछल उछल के कूदते हुए इधर उधर भागने लग जाते। आपने देखा होगा कि गाय के बछड़े कैसे उछल 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 के कूदते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है ये। तो वो खींच के ले जाते थे कृष्ण और बलराम को मिट्टी में, ब्रज के रज में, जिसमें कि गोबर पड़ा हुआ होता था, गौमूत्र पड़ा हुआ होता था। और गोपियां इस दृश्य को देखकर बहुत हंसती, उनका मनोरंजन यही था। वो तो कहीं टीवी नहीं देखते थे, ना कोई सिनेमा देखते थे, ना कोई इधर उधर बाहर खाने जाते थे, ना कोई उनके पास मोबाइल फोन हुआ करता था। जीवन कितना सुखी था उन दिनों में, केवल कृष्ण बलराम की सेवा, गायों की सेवा, और दिन भर उनका गुणगान करते रहना। तो कृष्ण बलराम की चर्चा के बिना और कोई दूसरा विषय था ही नहीं ब्रजवासियों के लिए, घूम फिर कर बात वही निकल आती थी। तो वृंदावन के निवासी, क्योंकि ये चांद सितारे थे, उनके आंखों के केंद्र बिंदु जहां भी वो देखते, कृष्ण और बलराम को ही देखना चाहते थे। और जब थोड़े बड़े हुए तो बछड़ों को चराने के लिए ले गए दोनों भाई, और बड़े हुए तो बड़े गायों को चराने के लिए अब ले जाते थे। अब इस आयु में श्री कृष्ण अपने अन्य लीलाओं को भी करने लगे। जब बलराम जी के साथ और ग्वाल बालों के साथ वन में जाया करते थे, तो कंस अनेक असुरों को भेजा करता था, और थोड़े ऐसे असुर थे जिनका वध स्वयं श्री कृष्ण करते थे, अनेक ऐसे भी असुर थे जिनका वध बलराम जी करते थे। एक बार हुआ कि ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम के पास आए और वो कहने लगे कि कृष्ण बलराम देखो वहाँ ताल वन नाम का बहुत सुंदर वन है, उसमें बहुत बड़े बड़े ताल वृक्ष हैं और वो फल वहाँ के बहुत ही स्वादिष्ट हैं, रसमय हैं, तो उन फलों को हम चखना चाहते हैं और बहुत भूख भी हमें लगी है, तो चलो वहाँ हमें ले जाओ और वहाँ ताल वृक्ष खिलाओ, ताल फल खिलाओ। तो कृष्ण बलराम बड़े खुशी से अपने मित्रों को ले गए ताल वन में। वहाँ जब गए तो देखा कि वाकई इतना रमणीय स्थान था, इतने बड़े बड़े वृक्ष और इतने सुंदर फल वहाँ लगे हुए थे, जी भर के सब खाने लगे बच्चे। जब ताल के फल तोड़कर खा रहे थे तो खबर पहुंची एक असुर के पास जिसका नाम था धेनुकासुर, जो कि अपने आप को उस तालवन का राजा मानता था। वो एक गधे के रूप में वहां निवास करता था गर्दभ, और उसके साथ में भी उसके बहुत सारे असुर मित्र थे जिन्होंने भी गधे का रूप धारण किया हुआ था। और वो इधर रह के जो भी वहां आता था उनको तंग करते थे, मार डालते थे। तो जब धेनुकासुर को पता चला कि कोई बच्चे यहाँ व्रज से आए हैं और वो भी कृष्ण और बलराम आए हैं, तो चलो अच्छा मौका है। वैसे भी कंस की इच्छा थी कि इन दोनों की हत्या की जाए। बड़े गुस्से में धेनुकासुर वहां दौड़ता हुआ चले आया, क्योंकि उसको क्रोध इस बात का था कि मेरे इलाके में मेरे अनुमति के बिना यहाँ कौन आ सकता है और कौन इस तरह से पेड़ों से फल जो है वो खा सकता है। तो जोर जोर से आवाज करते हुए, गधे कैसे आवाज करते हैं आप जानते हैं, आपने सुना होगा, और जोर जोर से भाग के हुए आया। और जो गधे हैं वो कैसे आक्रमण करते हैं आशा करते हैं आपने नहीं देखा होगा, इसलिए हम आपको बता देंगे। फिर भी गधा कहीं देखा भी तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, गधे के पीछे से नहीं जाना, जाना है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। गधा कैसे आक्रमण करता है, जैसे गाय बैल होते हैं उनको कोई खतरा होता है तो वो अपने सींगों से आक्रमण करते हैं, कभी कभी लात भी मारते हैं, लेकिन प्रमुख जो उनका शस्त्र होता है वो उनका सींग होता है। तो गधे अपने पिछले पांवों से लात मारते हैं, वो अपने सामने वाले पैर में खड़े हो जाते हैं और पीछे पीछे पिछले जो दो पांव हैं उठाते हैं और पूरी ताकत लगा के लात मारते हैं। ऐसे ये गधों का तरीका होता है। आप सोच रहे होंगे ये कृष्ण कथा करने आए हैं कि गधों की कथा करने आए हैं, परंतु देखिए हम क्या करें, अब वो असुर ने गधे का रूप ही धारण किया था और कृष्ण उसका वध करने जा रहे थे, इसलिए नहीं तो हमें गधे से कोई लेना देना नहीं। तो वो आक्रमण करने चले आए और कृष्ण को देखा, कृष्ण का सुंदर रूप अपने आंखों से देखा, तो कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण मन में नहीं हुआ। देखा तो सही ये बहुत सुंदर लड़का है, ये कौन है, इसकी क्या औकात है कि यहां आके इसने ऐसे उत्पात कर दिया है। जो असुर वृत्ति के लोग होते हैं किसी सुंदर दृश्य को देखकर, भगवान का रूप देखकर भी आकर्षित नहीं होते हैं। उनकी बुद्धि तो उनको बता देता है कि ये बहुत सुंदर रूप है, लेकिन उस सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होने के बजाय उनके हृदय में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो बढ़ जाता है। जैसे कि जब श्री कृष्ण यमुना में छलांग मार दिए कदंब वृक्ष के ऊपर से, जबकि उनको पता चला था कि इस यमुना हृद कालिया हृद में, इस सरोवर में जो यमुना से लगी हुई है, कालिया नाम का एक बहुत विषैला सांप है और इसका जहर इतना खतरनाक है कि केवल इसके वाफ मात्र से पंछियां गिर पड़ते हैं नदी में, और श्री कृष्ण के ग्वाल बाल और उनके प्रिय गाय भी यमुना का जल पी के बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब इस कालिया का को सबक सिखाना ही होगा। तो श्री कृष्ण ने छलांग मार दी और अपने भुजाओं से पानी को हिलाने लगे, पानी में बड़े बड़े लहर होने लगे, आवाज जोर से पानी में चली नीचे जहां कालिया निवास करता था। कालियों को बड़ा गुस्सा आया, कौन आया मेरे घर में बिना मेरे अनुमति के, कौन आ सकता है? स्वाभाविक है, हमारे घर के दरवाजे पे कोई जोर जोर से आके खटखट खट आवाज करे तो हमें भी गुस्सा आएगी, कौन है, कौन आया अचानक, और दरवाजा तोड़कर कोई आए तो और भी गुस्सा आएगा। तो काली को बहुत भी ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे घर में कौन ऐसे चले आया। और फिर जब तेजी से काले आए, उसकी लाल लाल आंखें थीं, वैसे भी सांप जो होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, आंखें लाल होती हैं ईर्ष्या के कारण। अब जल के भीतर से उसने श्री कृष्ण को तैरते हुए देखा और सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि कालिया ने क्या दृश्य देखा अपने आंखों के सामने। श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर था, फिर भी उस सौंदर्य के प्रति कालिया के हृदय में कोई भी आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। इसने देखा कि यह सुंदर बालक है, लेकिन ईर्ष्या और क्रोध बढ़ गया, वो जहर बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से धेनुकासुर ने जब बलराम और श्री कृष्ण को देखा तो ईर्ष्या और क्रोध बढ़ गया और बहुत तेजी से आवाज करते हुए वो भागते हुए आया और अपने पीठ दिखाया बलराम को, अपने दो सामने वाले पांव पर खड़े होकर पिछले दो पांव से बहुत जोर से लात मारा और बलराम जी के वक्षस्थल में लगा, लेकिन ऐसे हुआ मानो कोई फूल अर्पण कर रहा है। बलराम जी हैं, बलभद्र उनका नाम है, वैसे पहले से ही उनको वो भविष्यवाणी तो हुई थी, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था और गर्ग मुनि ने कि ये बहुत बलवान होंगे, एक गधे के लात से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, भले वो इतना शक्तिशाली गधा भी क्यों ना हो। फिर बलराम ने उस गधे को अपने पैरों से पकड़ लिया, उसके पैरों से, और उसको घुमाया इतनी तेजी से, गोल 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 घुमाया कि उसके प्राण वहीं के निकल गए, इतने तेजी से घुमा लिया, और फिर उसे गेंद की तरह फेंक दिया आसमान में। और बहुत सारे लंबे लंबे ताल वृक्ष तो थे वहां पर, इतनी ऊंचाई पर गया उसका शरीर के ऊपर से वो ताल वृक्षों के ऊपर आके गिर पड़ा, और उसका वजन पहले तो बहुत भारी था और दूसरा बड़े प्रचंड वेग से फेंक दिया था बलराम जी ने धेनुकासुर को। तो जब वो वहां वृक्षों के ऊपर गिरा, मर चुका था, परंतु उस वेग से वो कई वृक्ष टूट पड़े, नीचे गिर पड़े। ये सब उत्पात और आवाज सुनकर जो धेनुकासुर के साथी थे वो भी सब क्रोधित होकर भागते हुए चले आए। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना मधुर संगीत वहां पे हुआ होगा उस समय। सारे के सारे सैकड़ों जो ये थे गधे अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे थे, आवाज कर रहे थे अपने अपने तरह से। और तो कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे के ऊपर देखने लगे, सारे ग्वाल बाल तो थे दूसरी ओर, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि हमारे साथ कृष्ण बलराम है, कुछ नहीं होगा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना। ये श्रद्धा है कि अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए ग्वाल बालों की तरह जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो भी निडर होते हैं, घबराते नहीं हैं किसी चीज से। तो कृष्ण और बलराम ने फिर बड़े आराम से उनके साथ खेल खेल में एक एक को पकड़ पकड़ के वैसे ही घुमा फिरा के ऊपर फेंक दिया और उन सारे गधों के असुरों के प्राण निकल गए और वो सब उन ताल वृक्षों के ऊपर गिरे। और हुआ ये कि सब कितने हजारों की संख्या में जो पेड़ थे वो सब गिर पड़े। बहुत रंग बिरंगी दृश्य दिखाई पड़ रहा था क्योंकि ये जो बादल के समान इनका रंग था और इनके अलग अलग रंग भी थे, तो ऐसे भयंकर युद्ध बड़े आसानी से कृष्ण और बलराम दोनों ने किया। एक बार एक और असुर आया जिसका नाम था प्रलंब, प्रलंबासुर, और उसने अपने आप को एक ग्वाल बाल के रूप में परिवर्तित करके कृष्ण बलराम जो ग्वाल बालों के साथ में खेल खेलते हैं उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। तो दोनों दलों के बीच में खेल तो हो गया और समझौता ये था कि जो दल हार जाएगा उसके सदस्य जो हैं वो जीतने वाले दल के सदस्यों को अपने कंधों पर बिठा के ले जाएंगे। तो बलराम जी का दल जो है वो जीत गया और जिस दल में प्रलंबासुर था वो दल हार गया। तो प्रलंबासुर एक साधारण ग्वाल बाल की तरह यहाँ पे नकल कर रहा था, तो उसने वो सीधा बलराम जी के पास गया कि चलो बलराम को अपने कंधे में उठा लूँ, बिठा लूँ और मैं कहीं एक एकांत स्थान में चले जाऊँगा और जहाँ ये सब लोग नहीं रहेंगे, कृष्ण भी नहीं रहेंगे, और वहाँ मैं बलराम की हत्या करूँगा। तो इस इरादे से वहाँ पर प्रलंबासुर आए, ग्वाल बाल जैसे दिख रहे थे, किसी को पता नहीं चला, और बलराम को कंधे में बिठा के जब ये भागता हुआ चले जा रहा था तो तब बलराम ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, ये दूसरी ओर इस तरफ क्यों जा रहा है और ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और इतनी तेज गति से कैसे भाग रहा है। तो बलराम जी को पता चला कि हाँ ये असुर है। तो बलराम जी हंसने लगे, अच्छा ऐसी बात है। तो बलराम जी अनंत शेष हैं, उनके विस्तार अनंत शेष हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके फणों पे जब रहते हैं तो उनको तिल या सरसों के दाने के बराबर प्रतीत होते हैं। हमें एक पत्थर उठाने में पसीने छूट जाते हैं, जान निकल जाती है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके जो तिल का तेल, तिल का बीज जैसे प्रतीत हो तो उनकी शक्ति कितनी होगी और उनका वजन कितना होगा, हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, वैसे कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बलराम ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि इसे लगा कि क्या हुआ, ये छोटा बच्चे को मैं ले गया था, अब इतना भारी वजन है कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो जो ग्वाल बाल का वेश धारण किया हुआ था उस असुर ने उस वेश को धारण कर नहीं पाया, अपना मूल रूप प्रकट हो चुका हो गया। और फिर बड़े आराम से बलराम जी ने उस असुर के सर के ऊपर एक मुक्का प्रहार किया बस अपने मुष्टि से, और जब किया तो उसका सर फूट गया और वहाँ गिर पड़ा। उधर देवलोक के निवासी आके फूलों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, बलराम जी का गुणगान गाने लगे। ऐसे अनेक लीलाएं हुई, बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में रहे, आगे चल के मथुरा में भी ऐसे लीलाएं हुई, फिर द्वारका में आए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में, और गदा युद्ध में बहुत प्रवीण थे बलराम। तो दुर्योधन और भीम दोनों उनके शिष्य थे, परंतु वो मानते थे कि शक्ति में भीम श्रेष्ठ है परंतु गदा चलाने की कला में दुर्योधन श्रेष्ठ है, इसलिए दोनों वैसे युद्ध करेंगे तो बराबर के रहेंगे। दुर्योधन दोनों से प्रेम करते थे, कौरवों से भी और पांडवों से भी, दुर्योधन तो उनके प्रिय शिष्य थे। तो जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो बलराम जी ने सोचा कि ये बड़ी विडंबना है मेरे लिए, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करूँ या मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करूँ, दोनों मेरे लिए प्रिय हैं। कृष्ण ने तो अपना पक्ष चुन लिया था, कृष्ण के लिए कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन बलराम सोचने लगे कि मैं क्या करूं। फिर बलराम जी ने निर्णय लिया, मुझे युद्ध में शामिल ही नहीं होना है। उन्होंने कृष्ण से कहा, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं निकल रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा में जाता हूं। जब भी कोई अपने घर के समस्याओं से उब जाते हैं तो सोचते हम जाएंगे तीर्थ यात्रा में, ऐसे होता है। कभी कभी भक्त भी आते हैं, कभी समस्या हो जाती है, सोचते हम चले जाएंगे वृंदावन। तो बलराम जी ने सोचा नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहने से या तो इनके पक्ष में रहना होगा, उनके पक्ष में रहना होगा, हमको चाहिए ही नहीं, हम तो युद्ध हम तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। ये भी बलराम जी की लीला है, आखिर ये भी तो भगवान ही है। और फिर बलराम जी जब सब जगह तीर्थ यात्रा करके आए, जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो अंत हो गया, हो चुका था युद्ध का, और वहां पे केवल दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हो रहा था। जब श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से बताया कि जंघाओं पे मारो, ऐसे इशारा किया, तो भीम ने गदा चलाया और दुर्योधन के जंघाओं में प्रहार कर दिया, तो दुर्योधन की हार हो गई, वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि ये तो अनैतिक दृष्टि से किया है, ये तो ठीक नहीं है। वैसे भीमसेन ने क्यों किया था? क्योंकि कृष्ण ने बताया था। अब कृष्ण ने कोई कार्य कर लिया तो दोष भीम को आ गया, तो श्री कृष्ण जाके मना लिया अपने बड़े भाई बलराम को कि नहीं नहीं नहीं, आप क्षमा कर दीजिए। तो बहुत मनाया, सांत्वना दी, तब वहां से फिर भी निराश होकर बलराम जी चले गए। बलराम जी ने यदुवंशों की ओर से कुरुवंशों को भी कई सबक भी कई बार सिखाए। जब उन्होंने देखा कि कुरुवंशी बहुत घमंडी हो गए हैं, तो उन्होंने कई सबक अपने बल के लेश मात्र प्रदर्शन से उनको सिखाए। बलराम जी श्री कृष्ण के पहले ही प्रकट हुए, लेकिन उनकी उपासना साथ साथ में की जाती है। हमारे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम की मूर्तियां प्रमुख मूर्तियां हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमें कृष्ण बलराम की उपासना करनी चाहिए, कृष्ण हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे, बलराम हमें दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण गो सेवा के प्रतीक हैं, गो रक्षा के, और बलराम जी कृषि सेवा या कृषि रक्षा के प्रतीक हैं। इसलिए जबकि श्री कृष्ण एक बांसुरी और छड़ी लेकर घूमते हैं, बलराम जी एक हल लेकर घूमते हैं। वो हल जो है उनका आयुध भी है, उनका शस्त्र भी है, अस्त्र भी है, इसलिए उनका नाम है हलायुध या हलधर। तो ऐसे बलराम जी और कृष्ण, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां गोसेवा होगी, जहां कृषि होगी, वहां हमारे सारे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर मनुष्यों को खूब समय मिलेगा अपने भरण पोषण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए उनके चरण कमलों में हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमें आध्यात्मिक शक्ति मिले आपके माया शक्ति का सामना करने के लिए, ताकि हम माया के अधीन न हो जाएं। आप ऐसे हमारे ऊपर कृपा करें कि हमें ऐसे सद्बुद्धि मिले और ऐसे प्रेरणा मिले कि हम श्री कृष्ण आपके छोटे भाई और प्रिय श्री कृष्ण के शरण में हम सदैव रहें, उनकी सेवा में, और हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। श्री बलराम जी की जय। बलराम जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।